पुस्तक दसवीं लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोए सौवसामूहं, वेदग वेदग वेदगं, अवेदगं वेदगंत संसिद्धं, सिद्धं पणमिय शिरसा वोच्छं वेदग महाहियारमहं। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतिश्रव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दसवीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 121 पर आ गए हैं। अभी हमारा विषय प्रवेशक का चल रहा है। प्रवेशक का अर्थ होता है उदयावली में प्रवेश करने वालों की अपेक्षा यहाँ बात चलेगी। वो भले उदय रूप हो या अनुदय रूप हो, कौन सी प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, उसके स्थान की बात चल रही है। तो हमने देखा असंयत के योग्य 28 का, 27 का, 26 का, 25 का, फिर 24, 23, 22 और 21 के स्थान देखे थे। और संयत के योग्य ने उपशामक में हमने पहले का, एक का, इसके बाद एक के बाद तीन का, चार का, चार के बाद छः, सात का, नौ का, दस और बारह, इस तरह से हमने देखे थे उसमें। हमने तो 21 तक लाए थे। देखो
नीचे से ऊपर आए थे ना, के बाद
6 के बाद हमने देखे थे, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 19, फिर 13 के बाद 19 लिए, 6 एक साथ लिए थी ना, हाँ 19 के बाद, हाँ 20 लिया था, और 20 के बाद 21 लिया था, लास्ट में नपुंसक वेद जब प्रवेश करता है तो 21 हो गए थे। यहाँ तक तो हमने देखा था। 121 पृष्ठ पर हम अपनी बात चलेगी। एक तो पाए जई क्षीण दंशन मोहनियो, एदाओ एकविषम पैडियो, पविसंती जाव अखवग अणुव सामगो ताव। इसके आगे यदि वह क्षीण दर्शन मुनि है, क्षीण दर्शन मुनि का अर्थ क्या है, शपक, क्षायिक सम्य दृष्टि, क्षीण दर्शन मुनि, दर्शन मुनि का जिसने क्षय किया है, क्षायिक सम्य दृष्टि, हमें वो क्षीण मोह वाली बात नहीं है, क्षीण दर्शन मोनी की बात चल रही, क्षीण मोह की नहीं। तो क्षीण दर्शन मोनी ने क्षायिक समय दृष्टि, तो ये 21 प्रकृतियां तब तक प्रवेश करती है जब तक वह अक्षपक और अनुपशामक रहता है, क्योंकि उपशम चालू किया तो एक एक प्रकृति वहां कम होती चली जाएगी। यहाँ पर अक्षीण दर्शन मोनिय के अंतर का नाश होने पर अंतर्मूर्त के बाद प्रकारांतर संभव है। पहली तो बात क्षायिक समय दृष्टि के लिए अक्षपक और अनुपशामक की। अब कहते जो अक्षीण दर्शन मोनिय है, यानी दर्शन मोनिय की, यानी जो क्षायिक समय दृष्टि नहीं है, उसकी बात चलेगी। तो कहते अंतर्मूर्त के बाद प्रकारांतर, यानी अन्य प्रकार से ये बात संभव है, उसको बताते हैं। इस बात का कथन करने के लिए यदि क्षीण दर्शन मुनि है यह वचन दिया है, यदि बताए ना जई ऊपर लिखा था, यानी यदि वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है तब तक वो 21 प्रकृतियां तब तक है जब तक वो अनुक्षामक और अक्षपक है। क्षपक और उपशामक पर्याय से परिणत उस जीव के फिर भी अंतरकरण आदि के वश से 21 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान नष्ट होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अक्षपक और अनुपशामक विशेषण दिया है। ये तो बताते समय एक से शुरू करके उतरते हुए की बात की थी, परंतु जो जिसने अभी श्रेणी चढ़ना शुरू किया है उसके स्टार्टिंग में जो 21 वाला है प्रवेशक, जब वो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ेगा या अंतर करेगा, गुणस्थान से भी अंतर की बात है, अंतर करने के बाद उसके एक एक प्रकृति का उपशमना चालू हो जाएगा, तो द्वितीय स्थिति में से प्रथम स्थिति में उदयावली में आने का रुक जाएगा, तो उसकी अपेक्षा कहेंगे कि वहां तो उसकी प्रकृति स्थान बदल जाएगी, 21 के बदले वो घटते चले जाएंगे। तो कहते अंतरकरण आदि के वश से 21 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान नष्ट होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अक्षपक अनुपशामक विशेषण दिया है। इसलिए उपशामना से गिरा हुआ क्षायिक सम्यदृष्टि जीव नीचे गिरकर प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत संयता संयत और असंयत सम्यदृष्टि गुण स्थानों में जितने काल रहता है उतने काल तक 21 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान नष्ट न होकर, क्या कहते हैं अभी हमने उतरते हुए घटित किया था, अब ये कौन सा है तो क्षायिक सम्यदृष्टि है, तो क्षायिक सम्यदृष्टि अभी श्रेणी की बात भूल जाओ, श्रेणी में नहीं है तो भले वो चौथे में है पांचवे में है छठे में है सातवें में है फिर भी कितने का प्रवेशक है तो 21 का, क्योंकि अनंतानुबंधी और दर्शन मुनि है ही नहीं है, जितने चारित्र मुनि है वो तो उदयावली में प्रवेश है उनका, चल में नहीं बात। तो कहे नष्ट न होकर पुनः क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी पर आरोहण करने पर नष्ट होता है। ये जो 21 प्रकृतिक स्थान है चौथे पांचवे छठे सातवें में तो रहता है, जब वो उपशम या क्षपक श्रेणी पर चढ़कर अंतर करेगा और आगे बढ़ेगा तो 21 वाला स्थान नष्ट हो जाएगा, यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब उपशांत दर्शन मुनि जीव का आश्रय कर, अभी तक क्षीण दर्शन मुनि बताया था, अब उपशांत दर्शन मुनि की बात करेंगे। इससे नीचे अन्य भी प्रवेश स्थान उत्पन्न होते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। एदस्त चेव कषायो व सामनादो परिवदमाणयस्य, कषायों की उपशामना से गिरने वाले इसी जीव के, ये आधा ही सूत्र दिया है फिर भी क्या होता है वो आगे बताएंगे, जिसने दर्शन मोहनी का उपशा दर्शन मोहनी का की चाहिए, दर्शन मोहनी की उपशामना की है, ऐसे कषायों की उपशामना से गिरने वाले इसी जीव के, क्या कहते हैं दर्शन मोह की उपशमना की है ऐसे कषायों की उपशमना की है, इसका अर्थ क्या है, ये वाक्य पढ़ा ना हमने, हाँ इसको इस वाक्य का अर्थ क्या है, दर्शन मोहनी की उपशमना की है ऐसे कषायों की उपशामना से गिरने वाले, आप क्या कहते हैं द्वितीय उपशम जीव उपशम श्रेणी से उतरते हुए, ये उसका अर्थ है, पहले दर्शन मुनि की उपशमना की है ने द्वितीय उपशम और कषायों की उपशमना से गिरने वाले ने अभी ग्यारहवें से नीचे आ रहे ऐसा उपशम श्रेणी से उतरने वाले, यानी द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव जो उपशम श्रेणी उतर रहा है उसके, ये उसका अर्थ है। द्वितीय उपशम वाला उपशम श्रेणी से उतरते हुए। तो जिसने दर्शन मोहिनी की उपशम ना की है, इसे कषायों की उपशमना से गिरने वाले। अभी उसमें जो कुछ विशेषता है, विभिन्नता है ना, उसमें और कुछ बातें बनना बनती है, उसे इस समय बतला देंगे। इस प्रकार इस विधि से पद संबंध करना चाहिए। ये जो सूत्र में बताया है कषायों की उपशमना कर उपशमना से गिरने वाले इसी जीव के, यद्यपि यहाँ पर सूत्र में उपशांत दर्शन मुनि के यह वचन नहीं कहा है, तो भी परिशेष न्याय से उसका सद्भाव जान लेना चाहिए। परिशेष ने भी कौन बचे, तो परिशेष न्याय। परिशेष ये शेष बस बाकी है उसकी बात। तो पहले सूत्र में बताया था कि कषायों की उपशमना से गिरने वाले इसी जीव के, अभी ये वाक्य पूरे कर रहे हैं, जाधे अंतरम विनट्ठम तत्तो पाए एक विषम पैडियो पविसंति जाव सम्मत्तमुदीरेन्तो सम्मत्तमुदये देवी सम्मामिच्छत्तम मिच्छन्तम च आवलिय बाहिरे निखिवदि ताधे बाविसम पैडियो पावसंति। पविसंति चाहिए, पावसंति नहीं, वो पविसंति, वो इकार रह गया उसका, वो पा का वो है ना आके, उसके साथ वो जोड़ देना उसको, पविसंति चाहिए। पविसंति पावसंति हुए ना, पविसंति त्याची वेलांटी करायची थी। ताधे बाविसम पयडियो बराबर, हाँ अब इसका अर्थ देखिए। जब अंतर विनष्ट हो जाता है, वहां से लेकर 21 प्रकृतियां तब तक प्रवेश करती है जब तक सम्यक्त्व की उदीर्णा करके सम्यक्त्व को उदय में देता है, और सम्यक मिथ्यात्व तथा मिथ्यात्व को, मिथ्या करना हो, मिथ्या हुआ है ना, मिथ्यात्व को उदयावली के बाहर निक्षेप करता है, तब 22 प्रकृतियां प्रवेश करती है। पहले में हमने क्या एक से शुरू किया था, 21 तक आए थे। 21 वाला अगर क्षायिक समय दृष्टि है तो उसका 21 ही रहेगा चौथे गुणस्थान तक, जब दोबारा वो श्रेणी चढ़ेगा तब की उसकी वो कम हो जाएगी, 21 से आगे बढ़ेगा नहीं। अब दूसरा कौन बचा जो 21 वाला था, तो उपशमिक द्वितीय उपशम वाला श्रेणी से उतरते हुए वो भी 21 तक आ गया। 21 कब हुआ, जब अंतर समाप्त हुआ तब उसका 21 का हो गया। अब द्वितीय उपशम में से वेदक होगा तो क्या होगा, उसका उदयावली उदय के समय से लेकर सम्यक प्रकृति के निषेक तैयार हो गए, और मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो उदयावली के बाहर दिया जाएगा। द्वितीय उपशम के ना अंतर किया था, और वो जो उपशमित थे वो नीचे आएंगे निषेक, वहां नई निषेक रचना शुरू हो जाएगी अंतर में। तो ये जो नया नया जो दिया जाता है, तो उदय रूप प्रकृति उदय समय से लेकर पूरे उदयावली में देते हैं और ऊपर तक, और अन्य जो अभी मिथ्या तो समय मिथ्या तो उदयावली के ऊपर रखेंगे उन अनंतर समय में। उदयावली के ऊपर दिया हुआ निषेक नीचे आ जाएगा, जो नीचे का गलेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, तब उसको कहेंगे इसका भी प्रवेश है, तो एक समय के लिए वो 22 का हो जाएगा, फिर बाद में वो बढ़ेगा। तो यहां कहते हैं, मैं सूत्र का अर्थ मैं फिर पढ़ती हूं। जब अंतर विनष्ट हो जाता है, ये उपशम श्रेणी से उतरते हुए की बात है, अंतर विनष्ट होने की बात है। अंतर कब विनष्ट हुआ था, जब नपुसक वेद ने प्रवेश किया था, तो अंतर विनष्ट हो जाता है वहां से लेकर, और ये द्वितीय उपशम समय दृष्टि है। 21 प्रकृतियां तब तक प्रवेश करती है, यानी वहां से लेकर अभी जब तक द्वितीय उपशम चलता रहेगा तब तक उसके 21 ही प्रकृतियों का प्रवेश है, ख्याल में, क्योंकि वो भले वो नीचे के गुणस्थानों में भी जगले जावे फिर भी उसका 21 का ही है, क्योंकि द्वितीय उपशम चल रहा है। यानी तब तक प्रवेश करती है नहीं जब तक उसका द्वितीयोपशम चल रहा है। परंतु उन्होंने उसकी भाषा में नहीं बताया, तो कहते जब तक सम्यक्त्व की उदीर्णा करके। सम्यक्त्व की उदीर्णा क्यों होगी? क्योंकि अभी वो द्वितीयोपशम में से वेदक हो जाएगा। तो कहते हैं जब तक सम्यक्त्व की उदीर्णा करके सम्यक्त्व को उदय में देता है, यानी वो वेदक सम्यक् दृष्टि होता है। और सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् मिथ्यात्व को उदयावली के बाहर निक्षेप करता है। तीनों ही उपशमित थी, तीनों ही का उपशम नष्ट हो गया, और जो अंतर था द्वितीय उपशम वाला, द्वितीयोपशम वाला जो अंतर था वो अंतर को पूर्ण किया जाता है। उसमें तीनों प्रकृतियों का द्रव्य आता है नीचे, परंतु सम्यक प्रकृति उदय समय से लेकर होगी पूरे उदयावली में, और बाकी दो है वो उदयावली के ऊपर रचना होगी। तात्पर्य यह है कि अंतर का विनाश होने के बाद ही समुपलब्ध स्वरूप 21 प्रकृतिक प्रवेश स्थान का तब तक अवस्थान देता है। समुपलब्ध है ने जो उपलब्ध हुआ है, अच्छी तरह से उपलब्ध हुआ है, समुपलब्ध स्वरूप, यानी अभी वो 21 प्रकृतियों का जो प्रवेश स्थान चल रहा है वो कब तक चलेगा? तो जब जाकर वेदक सम्यक तो शुरू होगा तब तक। तब तक अवस्थान रहता है, अवस्थान रहता है ना, वो 21 का ही रहेगा जब तक उपशम सम्यक्त्व के काल का अंतिम समय प्राप्त होता है। ये द्वितीय उपशम की बात चल रही है। आगे उपशम सम्यक्त्व के काल का नाश होने से सम्यक्त्व की उदीर्णा करते हुए सम्यक्त्व को उदय में देने पर, यानी सम्यक प्रकृति को उदय में दे दिया है, तथा मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का आवली के बाहर निक्षेप करने पर उस समय, एक समय की बात चल रही है, 22 प्रकृतियों के प्रवेश स्थान की उत्पत्ति होती है। केवल सम्यक्त्व की उदीर्णा करने वाले का ही यह क्रम नहीं है, किंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या करना की उदीर्णा करने वाले के भी इसी क्रम से 22 प्रकृतियों के प्रवेश स्थान की उत्पत्ति कहनी चाहिए, क्योंकि यह सूत्र देशामर्शक है। क्या कहना चाहते हैं? जरूरी नहीं कि द्वितीय उपशम के बाद वो वेदक समय दृष्टि हो जाए, वो तो मिथ्यात्व में भी जा सकता है, तो मिथ्यात्व को उदय समय से लेकर दिया जाएगा, बाकी दो ऊपर रहेगी। यदि तीसरे में चला जाए, अभी सासाधन की बात नहीं उठाई, अभी तीसरे में चला जाएगा, दूसरे की बात करेगी तो अलग से करेंगे, क्योंकि यह सूत्र देशामर्शक है। विशेषार्थ, उपशम समय दृष्टि जीव अपने काल को समाप्त कर वेदक समय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि इनमें से कोई भी हो सकता है। देखो 11वें गुणस्थान तक का जिसका हो गया वो तो वहां से चलकर कहां चला जाएगा? जब जो होगा तब उस गुणस्थान के अनुरूप मिथ्यात्व आदि तीन में से किसी एक प्रकृति की उदीर्णा होगी, अन्य दो का उदयावली के बाहर निक्षेप होगा। उसको उदीर्णा नहीं कहेंगे, उदीर्णा तो उसी को कहते हैं जो उदयावली में देकर उदय में आती है। उदय भी होता है और उदयावली में भी दिया जाता है, और बाकी की क्या होती है? अपकर्षण होता है उसका। उदीर्णा भी अपकर्षण के द्वारा ही होता है, पर उदीर्णा नाम स्पेशल है क्योंकि अपकर्षित द्रव्य जो उदयावली में देकर उदय में आता है उदय समय से, उसको उदीर्णा कहते हैं। और ऑर्डिनरी अपकर्षण ऊपर ही ऊपर दिया तो उसको मात्र अपकर्षण कहेंगे। यहां दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियों में से सम्यक्त्व की अपेक्षा यह कथन किया है। मूल सूत्र में तो सम्यक्त्व की अपेक्षा कथन किया है, ऐसा ही मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के भी बारे में समझना चाहिए। अब उसी जीव के दूसरे समय में, एक ही समय के लिए वो हो गया, अविवक्षित दर्शन मुनि की दो प्रकृतियां। अविवक्षित ने, विवक्षित हमारी सम्यक प्रकृति थी, अब बाकी दो उसको हम अविवक्षित कहेंगे, वो उदयावली के ऊपर दिए थे, अभी एक ही समय में वो उदयावली में प्रवेश करेंगे, क्योंकि नीचे का एक, हाँ दोनों, नीचे का एक निशे गल गया तो ऊपर के निशे उदयावली कहलाएंगे अभी। तो अविवक्षित दर्शन मोनी की दो प्रकृतियों का प्रवेश होने से 24 प्रकृतियों के प्रवेश स्थान की उत्पत्ति होती है, 22 में से 24 हो जाएगी। इस बात का कथन करने के लिए कहते हैं, से काले 24 पयड़ियों पविसंती। ये पहला ऐसा लिया है कि द्वितीय उपशम वाला है, वो दर्शन मुनि की अपेक्षा उसके पहले 22 का होता है किसी का उदय होने से, और फिर उसके बाद 24 का हो जाता है। से काले 24 पयड़ियों पविसंती, तदनंतर समय में 24 प्रकृतियां प्रवेश करती है। यह सूत्र सुगम है, यद्यपि पहले असंयत जीवों के योग्य स्थानों की प्ररूपणा करते समय 21, 22 और 24 प्रकृतिक प्रवेश स्थानों की समुत्कीर्तना कर आए हैं, तो भी उपशामक जीव के प्रतिपात के संबंध से फिर प्रकारांतर से इनका उपन्यास किया है, यानी यहाँ उसका वर्णन किया है, इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं है। कहते कि पहले तो बताई थी 24 प्रकृतियां कैसे होती है, क्या होती है, तो कहते ये तो उपशम ना करके गिरा हुआ है, जो उसकी अपेक्षा फिर दोबारा उसका कथन किया है। जैसो कसाय व सामनादो परिवदिदो दंशन मोहि व संत धाये, यानी दर्शन मोह के उपशम के काल में अध्याय ने काल अचरिमेशु समयेशु आसाणम गच्छई, अचरिमे ने उपांत समय, आसानम गच्छे ने उसके आसाधना की समय कृति, तदो आसानम आसान गमनादो, आसान गमन यानी सासाधन हुआ ना, अभी सासाधन में आया, से काले पणुवीसम पयड़ियो पविसंति, 25 हो जाएगा। हाँ देखो, यदि वह कषायों की उपशामना से गिरता हुआ दर्शन मोनी के उपशामना काल के अचरम समयों में सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है, तो उसके सासाधन गुणस्थान में जाने के एक समय बाद 25 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। देखो यहाँ तो पहले सासाधन की बात नहीं की, यदि वो सासाधन में आता है पहले समय में तो दर्शन मणि तो उपशमित है, तो सासाधन में आने पर उसके कितनी होगी प्रकृतियां, तो 22 हो जाएगी बराबर। अब ये कौन सा जीव लिया है, इक्कीस कैसे होगी, अनंतानुबंधी तो उदय हुआ है ना, उदय है एक का, हमने पहले देखा था सासाधन में भी लिया था, हमने 4 पॉसिबिलिटीज ली थी, या तो मिथ्यात्व का, या समय मिथ्यात्व का, या समय प्रकृति का, या सासाधन में अनंतानुबंधी का, तभी एक प्रकृति बढ़ गई थी। अब ये कौन सा जीव ले रहे हैं, अंतिम समय तो ये उन्होंने बताया, देखो हम पढ़ेंगे इसको, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, द्वितीय उपशम का अंतिम समय, द्विचरम समय, हाँ एक समय पहले सासाधन में कब आएगा, उसका काल एक ही समय है, विचरम समय में आया है सासादन में, तो उसका दूसरा समय नहीं, मिथ्यात्व में जाने का समय आ गया उसका। मिथ्यात्व में क्या है ना,
सासादन का काल
एक समय लिया, एक समय वाला सासादन लिया। बाईस के तेईस होने चाहिए थे, हम उसी को पढ़ेंगे। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं कषायोपशामना से गिरे हुए जीव के दर्शन होने के उपशमना का काल अंतर्मूर्त शेष बचता है, उसमें से जब छावली काल शेष रहे वहां से लेकर उपशामना काल के अंतिम समय तक सासादन गुण रूप से परिणमन करना संभव है। ये तो ऑर्डिनरी कथन बताया उन्होंने। उसमें से अंतिम समय में सासादन भाव को प्राप्त होने वाले जीव की अन्य प्ररूपणा होगी, एक समय बाद होने वाले की उसकी प्ररूपणा अन्य करेंगे, इसलिए उसे छोड़कर द्विचरम आदि अधस्तन समयों में अधस्तन भाव को प्राप्त होने वाले जीव के सर्वप्रथम प्रवेश स्थान की गवेषणा इस सूत्र द्वारा करते। अच्छा अच्छा, यानी वो अंतिम समय नहीं, द्विचरम नहीं, उसके बहुत पहले, तो बहुत पहले क्या होगा, एक क्रोध पहले प्रवेश करेगा एक समय के लिए, दूसरे समय में यानी जब क्रोध प्रवेश करेगा, यानी क्रोध का उदयावली से दिया जाएगा और बाकी तीन ऊपर रहेंगे उदयावली के बाद, दूसरे समय में वो भी प्रवेश करेंगे, यानी अनंतानुबंधी के चार प्रवेश करेंगे। तो अनंतानुबंधी के चार हो गए, पहले कितने थे उसके, 21 24 को भूल जाओगे, 24 को छोड़ दो, ये दूसरा जीव है, क्योंकि वो वेदक या मिथ्यात्व में जाएगा या सम्यक मिथ्यात्व में जाएगा, सम्यक प्रकृति का उदय होगा, वो तो उपशमना का काल पूरा हुआ है उसकी बात है। यहाँ किसकी बात चल रही है, सासादन में की बात है, यानी एटलीस्ट दो समय सासादन में रहना चाहिए उसकी बात है, एटलीस्ट दो समय। तो पहले समय में सासादन में आया तो 22 का हो गया, और क्योंकि अन्य जो क्रोध तो आया उसको उदयावली में, और मान माया लोग तो उदयावली के ऊपर के समय से ऊपर दे दिया था, तो फिर वो चारों हो गए ना, अभी यानी अन्य एक्स्ट्रा तीन हो गए, 22 में से 25 हो जाएगा। चल में आई बात मंजू बेन, समझ में आई ना। देखो पहले ये द्वितीय उपशम था तो अनंतानुबंधी था नहीं वहां पर, उसकी विसर्जना करके द्वितीय उपशम हुआ। पहले 21 में से अभी 21 का चल रहा था, द्वितीय उपशम का काल चल रहा था, अभी वो लास्ट एक समय वाला सासादन उसको छोड़ दो, छह आवली से लेकर कोई भी ले लो, इन्होंने उपांत समय भी उसमें भी घटित होगा कि दो समय वो उसका बाकी है। तो सासादन में आते ही अनंतानुबंधी क्रोध को तो उदयावली से लेकर उसकी रचना हो गई, और अन्य जो तीन है वो उदयावली के ऊपर से उसकी रचना हो गई। ये एक समय के लिए पोजीशन है, तो वहां उसका 22 का स्थान हो गया। एक समय बीतने पर वो जो ऊपर दिए थे वो अन्य तीन भी उदयावली में प्रवेश कर जाते हैं, तो 25 का हो गया, इसलिए उपांत वाला लिया सब। उपांत समय से और नीचे चले जाओ, अंत से तीसरा समय ले लो, चौथा समय ले, छह आवली तक नीचे आ सकते, इसलिए द्विचरम आदि कहा। इसको मैं फिर पढ़ती हूँ, देखो इस सूत्र का अर्थ कहते हैं कषायोपशमना से गिरे हुए जीव के दर्शन मुनि के उपशमना का काल अंतर्मूर्त शेष बचता है, उसमें से जब छह अवली काल शेष रहे वहां से लेकर उपशमना काल के अंतिम समय तक सासादन गुण रूप से परिणमन करना संभव है। गुण रूप है नहीं, गुणस्थान। उसमें से अंतिम समय में सासादन भाव को प्राप्त होने वाले जीव की अन्य प्ररूपणा होगी, क्योंकि वो एक समय के लिए सासादन में आएगा तो 22 का स्थान होगा, और नेक्स्ट समय में वो मिथ्यात्व का उदय होगा, तो 26 का वैसे होगा। वो मिथ्यात्व उदयावली से होगा ना, अंतर हो गया समाप्त उसका। तो मिथ्यात्व का उदय होगा, एक साथ तीनों का कैसा होगा,
नहीं तीनों का
हाँ तो तीन और एक चार हो जाएगी, फिर 26 हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं उसकी अन्य प्ररूपणा होगी वो बाद में देखेंगे, इसलिए उसे छोड़कर द्विचरम आदि, यानी द्विचरम त्रिचरम ऐसा नहीं, नीचे की ओर लेना, द्विचरम आदि अधस्तन समयों में अधस्तन भाव को प्राप्त होने वाले जीव के सर्वप्रथम प्रवेश स्थान की गवेषणा इस सूत्र द्वारा करते हैं। यथा यया हुआ यथा, कषायोपशामना से गिरता हुआ उपशांत दर्शन मुनीय जीव, यानी द्वितीय उपशम समय दृष्टि, उपशम श्रेणी से नीचे आ रहा है, दर्शन मोह के उपशामना के काल के अंतर्गत द्विचरम आदि अधस्तन समयों में यदि सासादन गुणस्थान को प्राप्त होता है तो सासादन भाव को प्राप्त होने वाले उसके प्रथम समय में अनंतानुबंधियों में से किसी एक प्रकृति का प्रवेश होने से, हम कहते क्रोध का समझने के लिए 22 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान होता है, अन्य 3 अनंतानुबंधी उदयावली के ऊपर के समय में दिए जाएंगे। वहां शंका स्वयं आचार्य उठा रहे हैं शिष्य के मुंह से, वहां अनंतानुबंधियों की किसी एक प्रकृति के प्रवेश का नियम क्यों है? समाधान, नहीं, क्योंकि सासादन गुण उसके उदय का अविनाभावी है। अनंतानुबंधी का उदय हुआ तभी तो सासादन गुण स्थान प्राप्त हुआ, और एट ए टाइम 4 का तो उदय होता नहीं है, एक ही का होता है। फिर शंका, पूर्व में सत्ता रहित अनंतानुबंधी कषाय का वहां पर उदय कैसे संभव है? ये महत्व का प्रश्न है, और हमने भी पहले इसके बारे में कि वहां है ही नहीं ना अनंतानुबंधी का, उदय कैसा हो गया? अभी सत्ता में नहीं था, विसंयोजना पूरी हो गई थी, सत्ता में कुछ नहीं था, और डायरेक्ट उदय कैसा हुआ? नया बंध भी होगा कि नहीं वहां पर? हाँ, बंद भी होगा और उदय भी होगा, तो कुछ नहीं था तो कैसे होगा, ये प्रश्न है। नहीं, क्योंकि परिणामों के महात्म्यवश शेष कषायों का द्रव्य उसी समय उस रूप से परिणाम कर उदय, उसका उदय देखा जाता है।
संक्रमण होकर
हो रहा है। हाँ, उसी समय, यानी उदय का समय वाला भी संक्रमण, जैसे हम प्रशस्त उपशम में क्या देखते थे, अनंतानुबंधी का उदय रूप होते होते एक निषेक टर्न होकर उदय में आता है, अब यहाँ उदय का निषेक भी अनंतानुबंधी रूप से उदय में आ रहा है, यानी अन्यत्र सत्ता में तो संक्रमण होगा ही होगा, उदय के समय से लेकर शुरू हो जाता है। और ये बात मात्र यहीं पर ले, मिथ्यात्व में ऐसी बात नहीं होती है, मिथ्यात्व में संक्रमण होकर तात्काल उदय नहीं आएगा, एक अवली काल बीत चली जाएगी। इसलिए सासादन में जाने के बाद अनंतर समय में 25 प्रकृतियां प्रवेश करती है, क्योंकि उदयावली के बाहर स्थित 3 प्रकार की अनंतानुबंधियों का उस समय में उदयावली के भीतर प्रवेश देखा जाता है, यानी वो 22 वाला एक समय के लिए रहा, दूसरे समय से वो अन्य 3 भी उदयावली में प्रवेश की, उसका उदय हुआ ऐसा नहीं कहते, उदयावली में प्रवेश कर गए, तो 25 का हो गया। जाधे मिच्छत्तम उदीरेदी ताधे 26 पयड़ियो पविसंती, जिस समय मिथ्यात्व की उदीरणा करता है उस समय 26 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। यही जीव लिया है, पहले 22 का था, 25 का हुआ, अब मिथ्यात्व में आया तो 26 का हो गया, क्योंकि उसी जीव के द्वारा क्रम से मिथ्यात्व की उदीरणा करने पर मिथ्यात्व के साथ 26 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश स्पष्ट उपलब्ध होता है, किंतु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व की उदीरणा करता हुआ तीन दर्शन मुनि का आकर्षण कर मिथ्यात्व का उदय समय से लेकर निक्षेप करता है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उदयावली के बाहर निक्षेप करता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। देखो हमने वो 26 वाला जब देखा था स्थान, अनादि मिथ्या दृष्टि को भी 26 वाला होता है। और फिर हमने दूसरी पद्धति से भी देखा है कि जब सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना पूरी होती है तभी भी है। अब ये और अन्य प्रकार से बताया है, क्योंकि साधन में था तो 25 का था, अब वो मिथ्यात्व में आया है तो मिथ्यात्व का उदय समय से तो एक समय के लिए वो 26 का होगा, बाद में अन्य दो प्रवेश करेगी तो 28 का हो जाएगा। और इसीलिए तदनंतर समय में उनका उदयावली में प्रवेश अवश्यम भावी है, इस बात का कथन करने के लिए कहते हैं। वो 26 के बाद 28 का होगा, वो बात करेंगे अभी। तदो से काले 28 पयडियो पविसंती, इसके बाद तदनंतर समय में 28 प्रकृतियां प्रवेश करती है। यह सूत्र गतार्थ है, यानी पहले ये बात आ चुकी है। जब हमने 28 की बात देखी थी तो किस प्रकार से होती उसकी बात देखी थी। इस प्रकार सर्वप्रथम द्विचरम आदि समयों में सासाधन भाव को प्राप्त होने वाले जीव के क्रम से ये स्पेसिफिक बताया, द्विचरम आदि यानी नीचे की, जिसका काल दो समय या ज्यादा है, ऐसे सासाधन जीव के क्रम से क्या क्या होगा, 22 फिर 25 फिर 26 फिर 28 प्रकृतियों के प्रवेश स्थान होते हैं, ऐसी समुत्कीर्तना करके अब दर्शन मोह के उपशांत काल के अंतिम समय में, यानी जो एक समय के लिए सासाधन होता है उसकी बात करेंगे। तो दर्शन मोह के उपशांत काल के अंतिम समय में सासाधन गुण को प्राप्त होने वाले जीव के कुछ भेद है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। अह सो कसाय व सामना दो परिवदि दो दंशन मोनियस व संत धाये चरिम समय आसानम गच्छई। क्या कहते हैं, यदि वो द्वितीय उपशम वाला उसका अंतिम समय है उपशम सम्यक्तों का, और उस समय यदि वो सासान गुणस्थान में जाता है से काले उस समय मिच्छत्तम उक्कडमाणयस्य 26 पयडियो पविसन्ति, यदि वह कषायोपशामना से गिरता हुआ दर्शन मुनि के उपशामन के काल के अंतिम समय में सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है तो तदनंतर समय में, यानी सासाधन को प्राप्त हुआ एक समय के लिए तो 22 का हो गया, और नेक्स्ट समय में मिथ्यात्व का आकर्षण करने वाले उसके 26 प्रकृतियां प्रवेश करती है। आप कहेंगे अकेला मिथ्यात्व नहीं, पहले वो अन्य तीन है ना, वो भी प्रवेश करेगी और मिथ्यात्व भी प्रवेश करेगा, तो 22 से डायरेक्ट एकदम 26 हो जाएगा। हाँ 25 वाला नहीं होगा बीच में। यदि वही जीव, अभी इसी का स्पष्टीकरण दोबारा बताते, कषायोपशामना से गिरता हुआ उपशम सम्यक्त्व के काल के अंतिम समय में सासाधन गुण को प्राप्त होता है तो उसके उस समय में पूर्वोक्त क्रम से ही 22 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान होकर अनंतर समय में मिथ्यात्व का आकर्षण करते हुए 25 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान न होकर मिथ्यात्व के साथ तीन अनंतानुबंधिया इनका युगपत प्रवेश होने के कारण 26 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, यह यहाँ पर विशेष है, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं आप। ये बात ख्याल में आती है मंजू बहन? एक समय के लिए सासाधन में रहा तो उस समय तो मान लेते क्रोध का उदयावली से निशिक रचना हुई थी, अन्य तीन अनंतानुबंधी उदयावली के ऊपर के समय से सर्वत्र थी। एक समय बीत गया तो अनंतानुबंधी तीन भी उदयावली में आ गई, और उसी समय वो मिथ्यात्व में जाने के कारण मिथ्यात्व भी उदयावली में और उदय में आ गया, तो चार एक साथ प्रवेश किए। उसके दूसरे समय में कितने हो गए, दर्शन मुनि के अन्य दो भी प्रवेश करेगी तो 28 हो जाएगा। तदो से काले 28 पैडियो पविसंति। इसके बाद तदनंतर समय में 28 प्रकृतियां प्रवेश करती है, दर्शन मूल के दो भी प्रवेश करेंगी। यह सूत्र सुगम है। विशेषार्थ, इस मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथम समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अपकर्षण होकर उदयावली के बाहर निक्षेप होता है और दूसरे समय में उन सहित 28 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है। यही सूत्र का भाव है। एदे वियप्पा कसाय उसामणादो परिवद माणगादो। ये विकल्प यानी ये पॉसिबिलिटीज, नहीं तो आप कहेंगे वो जो विकल्प करता रहता है कि उसकी बात नहीं है। ये अलग अलग कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है। ये विकल्प कषायोप सामना से गिरने वाले जीव की अपेक्षा होते हैं। ये पूर्व में कहे गए विकल्प कषायोप सामना से गिरने वाले जीव का आश्रय लेकर कहे गए हैं। इस प्रकार यह प्रकृत अर्थ का उपसंहार वचन है, किंतु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर अन्य विकल्प भी संभव है, अतः उनका कथन करते हैं। क्या विकल्प हो सकते हैं? और सीधा देव में भी जाएगा ना मरकर? हाँ, देखो उनका कथन करते हैं। यथा उपशामना से गिरने वाला जो जीव तीन प्रकार के लोभ का अपकर्षण करके तीन का प्रवेशक होकर स्थित है, वह मरकर देवों में उत्पन्न हुआ। क्या कहते हैं? तीन का अपकर्षण किया और एक तो उदयावली में आया है, पर तीन लोभ, तीन संज्वलन लोभ का पहले उदीर्णा किया, ग्यारहवें में से दसवें में आया, तो तीन का अपकर्षण किया। एक तो उदय समय से लिया और बाकी दो ऊपर थी, दूसरे समय में वो भी प्रवेश करेगी, यानी तीन उदयावली में है, तो तीन का प्रवेशक है वो भी। वह मरकर देवों में उत्पन्न हुआ। उसके प्रथम समय में पुरुषवेद हास्य और रति ध्रुव होकर भय और जुगुप्सा के साथ 8 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। कितने का प्रवेशक था? तीन का। अभी कितने का? पुरुषवेद तो उदय रूप होगी, हास्य रति ये तो ध्रुव है, वो भी उदय रूप होगी, क्योंकि गुणस्थान चौथा है। क्रम से नीचे आता है तो जब 6 का उदय तभी वो तो केवल उसके उदीर्णा होती है, परंतु उदय नहीं होता है वगैरह। यहाँ तो पुरुषवेद हास्य और रति तीनों का उदय होगा, देव का पहला समय है। भय और जुगुप्सा तो ऑप्शनल है, फिर भी दोनों को एक साथ लिया यहाँ पर। तो पहले तीन थी, ये तीन, 6 और ये 2, 8 हुआ। तथा 6 प्रकृतियों के प्रवेश के साथ, 6 कौन सी प्रकृतियां लक्ष्मी बहन? 6 प्रकृतियों के प्रवेश के साथ तीन लोभ और ये तीन जो ध्रुव बताई थी उसके साथ, हाँ उसके साथ तीन लोभ और पुरुषवेद हास्य रति जो ध्रुव रूप से है, उसके साथ मरकर देव में उत्पन्न होने के प्रथम समय में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्ववत। अच्छा, ये 6 प्रकृतियों के साथ, सॉरी तीन लोभ और तीन माया लिए। पहले तीन लोभ लिए थे, तीन लोभ पर तीन माया, यानी वो तीन वाला मरकर देव में गया तो 8 वाला हो गया। अब ये 6 वाला प्रथम समय में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्ववत पुरुषवेद हास्य रति भय और जुगुप्सा का युगपत प्रवेश कराने पर 11 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान उत्पन्न होता है। पहला 3 में से 8 हुआ था, अब ये 6 में से 11 हुआ। पुनः नौ प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के, यानी तीन लोग, तीन माया और तीन मान, मरकर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में पूर्व में कही गई पांच प्रकृतियों का प्रवेश होने पर 14 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान होता है। 9 में से 14 हो गए तथा तीन प्रकार के क्रोध का आकर्षण कर 12 प्रकृतियों के प्रवेशक हुए जीव के द्वारा मरकर देवों में उत्पन्न होने पर भय और जुगुप्सा के बिना हास्य रति और पुरुष वेद का प्रवेश होने पर 15 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान होता है, यानी 12 में से इसको भी 15 लिया, छोड़ कर लिया, भय जुगुप्सा को छोड़ा है यहाँ पर। नहीं करेंगे ना, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, तीनों पॉसिबिलिटीज है। हाँ, उनमें भी तीन तीन पॉसिबिलिटीज हर एक में होगी। भाई युगोपा के साथ 8 लिए तो बिना उसके साथ भी हो गए 6,
साथ 6 वाला होगा, 7 वाला होगा।
हाँ होगा,
जैसे वाले जब तक क्रोध कषाय उदय में नहीं है तब तक भाई और युगोपा रहेगी रहेगी, और क्रोध कषाय होने के बाद भाई युगोपा आपसे हो जाएगी।
नहीं नहीं, देखो उसी 12 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के द्वारा आगे पढ़ते, मरकर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में भय और जुगुप्सा में से किसी एक के साथ हास्य रति और पुरुष वेद के प्रवेश करने पर 16 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान उत्पन्न होते हैं। 12 में से 15 बताया था, 12 में से 16 हो गया। और यदि उसी जीव ने 12 प्रकृतियों के ऊपर पुरुष वेद, हास्य रति, भय और जुगुप्सा, इन पांच प्रकृतियों का एक साथ प्रवेश कराया तो उस सब प्रथम समयवर्ती देव के 17 प्रकृतियों का प्रवेश स्थान होता है। 12 के साथ 15 भी, 16 भी, 17 भी, तीनों में से कोई भी हो सकते
हैं। ये बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ तो 15 16 17 लिया, वहाँ पर 9 10 11 क्यों नहीं लिया, या 12 13 14 क्यों नहीं लिया,
6 7 8 9 10
जो है, अगर 3 रहते 2 10 11
ये बीच में नहीं बताया उन्होंने, 8 11 14 15 16 17 इतने ही बताए, यानी भय जुगुप्सा दोनों को लिए है एक साथ,
यहाँ पर ऑप्शन लेती हूँ, छोड़ा नहीं है, यहाँ पर बोलते 15 16 17 एक लेता हूँ, एक छोड़ता हूँ, दोनों लेता हूँ,
या उसको अलग अलग तरीके से बता देंगे आगे, पता नहीं ऊपर के स्थानों में, तो भय जुगुप्सा दोनों को लिया, 8 11 और 14 तीन बताए दोनों थे, इसमें से भय जुगुप्सा भी था, वो 17 वाला था, और किसी के 16 वाला भी होगा, किसी के 15 वाला भी, ये बात की उन्होंने,
पहले जो भय जुगुप्सा खाते लिया तो ये 15 वाला था,
नहीं नहीं 15 16 और 17
हाँ 15 16 और 17
देखो 15 में दोनों को नहीं लिया, 16 में एक वाले को लिया, किसी एक को, और 17 में दोनों को लिया,
14 तक तो भेजू गुप्ता था।
हाँ देव में हास्य रति का उदय है पहले अंतर्मूर्त में, नियम से शोक रति का नहीं होता, वो नहीं है, परंतु पहले अंतर्मूर्त तो नियम से हास्य रति का ही होगा। इस प्रकार ये 8 11 14 15 16 17 प्रकृतियों के प्रवेश स्थान देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही प्राप्त होते हैं, किंतु
हाँ
स्वयं लिख रहे ना, ये
लिख रहे होते नहीं हो,
किंतु ये सूत्रकार ने नहीं कहे हैं, क्योंकि सूत्र में स्वस्थान समुत्कीर्तना की ही विवक्षा रही है, यानी मरकर अन्यत्र जाने वाले की बात नहीं है, उपशम श्रेणी से क्रम से गिरने वाले की वहां बात की उन्होंने। एक तो खवगा दो मग्गी अव्वा कदी पवेसर थाना थी। आगे शपक के आश्रय से कितने प्रवेश स्थान होते हैं इसकी मार्गणा करनी चाहिए। मार्गणा करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। मार्गणा का अर्थ होता है खोज, अन्वेषण। उपशामक के योग्य प्रवेश स्थानों की प्ररूपणा करने के बाद आगे शपक के आश्रय से वहां कितने प्रवेश स्थान होते हैं इसका ज्ञान कराने के लिए प्रवेश स्थान समुत्कीर्तना का विचार करना चाहिए। उपशम श्रेणी में तो उपशामक के तो गिरते हुए उन्होंने गठित करके दिखाया था। अभी एक शपक के बताएंगे, एक एक प्रकृति नष्ट हो जाएगी। हाँ, तो उदयावली में प्रवेश नहीं करेंगे तो उसके उसके अलग अलग स्थान बताएंगे। तम जहां आठ कषायों की बात बताएंगे अभी। यथा दंशन मुनि खविदे इक्का विषम पयड़ियो पविसंती। दर्शन मुनि का क्षय होने पर 21 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। यद्यपि यह अर्थ पहले असंयत प्रायोगिक स्थानों के कथन के समय कह आए हैं, तो भी पुनरुक्त दोष नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो 21 वाला ही होगा इसमें भी, क्योंकि पूर्वोक्त अर्थ का ही अनुवाद करके अर्थ का अर्थम का हुआ है। आगे अपूर्व अर्थ का कथन करेंगे। पूर्वोक्त अर्थ ने जो पहले बताया हुआ है और अपूर्व ने जो अभी तक नहीं बताया है उसकी बात यहाँ बताएंगे। इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र का अवतार हुआ है। अठ कषाय सुखविदेशु 13 पयड़ियों पविसंती। आठ कषायों का क्षय होने पर 13 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। शपक श्रेणी पर चढ़े हुए पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के द्वारा अनिवृत्ति गुण स्थान में प्रवेश करके आठ कषायों का क्षय कर देने पर वहां से लेकर जब तक अंतरकरण समाप्त नहीं होता है तब तक 4 संज्वलन और 9 नौकषाय संज्ञा वाली 13 प्रकृतियां उस क्षपक के उदयावली में प्रवेश करती है, यह इस सूत्र द्वारा कहा गया है। उपशमना तो 21 का 21 को उपशमन किया था वहां पर, तो यहां पर इसका क्षय हो जाता है 8 का, तो 13 बचती है। अंतरे कदे 2 पयड़ियों पविसंती। अंतर करने पर 2 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। ये 2 प्रकृतियां कौन सी होगी मंजूबेन? हाँ रश्मि, एक वेद और एक कषाय। 9वें गुणस्थान में उदय रूप 2 ही प्रकृतियां होती है, संज्वलन में से कोई एक और एक वेद। हाँ, कोई भी वेद। तो कहते अंतर करने पर 2 प्रकृतियां प्रवेश करती है। यथा अंतर करने वाला क्षपक जीव पुरुष वेद, अब यह पुरुष वेद और पुरुष संज्वलन को ले लिया है समझाने, कोई भी हो सकता है, ये समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल ले लिया। पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन की अंतर्मूर्त मात्र प्रथम स्थिति स्थापित करता है, शेष कषाय और 9 कषायों की उदयावली को छोड़कर शेष सब स्थिति अंतर को प्राप्त हो जाती है। यानी ये जो अंतर करते हैं तो उदय के समय से लेकर जो उदय रूप कषाय या उदय रूप वेद है वो उदय के समय से लेकर उसकी रचना होती है, और बाकी जो है अनुदय रूप है वो उदयावली के ऊपर उसकी रचना होती है। इस प्रकार अंतर को करने वाला जब पहले समय तैयार होते हैं, प्रथम स्थिति दूसरी स्थिति, तो जो उदय रूप है उसको पहले समय से लेकर दिया जाता है, उसकी रचना उदय के समय से, और बाकी उदयावली के ऊपर है। इस प्रकार अंतर को करने वाला जब अंतर को समाप्त करता है, तब पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन की अंतर्मूर्त मात्र प्रथम स्थिति स्थित रहती है। शेष 11 प्रकृतियों की एक समय कम आवली मात्र गोपुच्छा शेष रहती है।
तो बाकी के भी एक समय कम आवली मात्र गोपुच्छा रहती है।
कब? अंतर समाप्त होने तक। अंतर किया तब क्या हुआ था? बीच में अंतर गैप तैयार हो गई थी, और नीचे उदयावली में तो क्रोध या वेद जो कोई दे दिए थे, और ये उदयावली के ऊपर बाकी थे। अब वो क्रम से नीचे आते चले जाएंगे, और जब अंतर समाप्त होगा तो पोजीशन क्या होगी? उदय रूप जो कोई है, वेद या कषाय, वो अंतर्मूर्त है, और इसकी कितनी है? एक समय कम आवली, ये उसकी उतनी शेष रह जाती है। पुनः अधस्थिति के द्वारा उनको पूरी तरह से गला देने पर तब दो प्रकृतियां ही उदयावली में प्रवेश करती हैं, क्योंकि पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन को छोड़कर अन्य प्रकृतियों की प्रथम स्थिति वहां संभव नहीं है। जिस समय अंतर किया वहां तो जो कुछ नीचे स्थिति थी, जब वो गल गई तो अभी कुछ नहीं नीचे, सब कुछ है, वो ऊपर की स्थिति में पड़े हैं, अभी उसमें से आकर उसकी रचना होती चली जाएगी। पूरी संवेदे खविदे एक्का पयड़ी पविसदे। पुरुष वेद का क्षय होने पर एक प्रकृति प्रवेश करती है, दो प्रकृतियों के प्रवेशक उसी क्षपक जीव के द्वारा क्रम से नपुसक नशु हो गया, नपुंसक वेद, ये जब अपने क्षपणा की बात हम पढ़ेंगे डिटेल में तब ये बात ज्यादा क्लियर होगी। कभी कंफ्यूजन है ना, वो कैसी नीचे ऊपर कैसी स्थिति, उपशमना में सभी वो रचना अंतर करना वो सब अलग है, और क्षपणा के प्रोसेस सभी अलग है, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा होगा। अभी यहाँ जितना अपना इस विषय के बारे में वो अभी बता रहे हैं, तो दो प्रकृतियों के प्रवेशक उसी क्षपक जीव के द्वारा, अभी उसको पुरुष वेद का क्षपक और उसका उदय रूप लिया है और क्रोध का उदय लिया है, क्रम से नपुसक वेद और स्त्री वेद का क्षय करके उसके बाद अंतर्मूर्त जाकर पुरुष वेद की प्रथम स्थिति के अंतिम समय में 6 नौकषायों के साथ पुरुष वेद के प्राचीन सत्कर्म का क्षय कर देने पर उसके आगे एक प्रकृति ही प्रवेश करती है। प्रवेश करो तो प्रवेश हुआ, क्योंकि यानी अभी पुरुष वेद का भी क्षय हो गया, नवक समय प्रबद्ध, परंतु वो तो प्रवेश नहीं करेगा, द्वितीय स्थिति में रहते हुए क्रोध संज्वलन रूप होकर नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी पुरुष वेद का उदय चल रहा है, तो आप कहेंगे नपुंसक वेद कैसे क्षय हो गया, द्वितीय स्थिति में थे ना परमाणु, वो सारे पुरुष वेद हो से टर्न होकर संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं। हमने देखा था सारा अनुपूर्वी संक्रमण वगैरह चलता रहता है, तो एक एक प्रकृति वो अन्य अन्य रूप होकर नष्ट होती चली जाएगी, द्वितीय स्थिति में ही पड़े पड़े, और जो उदय रूप है वो तो नीचे आती रहती। देखो, एक प्रकृति प्रवेश करती है क्योंकि वहां पर क्रोध संज्वलन को छोड़कर अन्य प्रकृतियों की प्रथम स्थिति नहीं पाई जाती, किंतु इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थिति के साथ पुरुष वेद के प्राचीन सत्कर्म का क्षय होने पर पुरुष वेद का क्षय कर ही दिया, यह सूत्र में विवक्षित है, बताया नहीं परंतु वो तो समझ लेना, क्योंकि द्वितीय स्थिति में अवस्थित नवक बंध की प्रधानता नहीं है, यह अर्थ आगे के सूत्रों में भी कहना चाहिए। वो क्षय कर दिया, ये तो प्रवेशक नहीं है, इतना ही हमें यहाँ लेना है, क्योंकि नवक बंध भले पड़ा है ऊपर, परंतु वो तो नीचे प्रवेश करने वाला नहीं है, वहीं पर रहते हुए उसका क्षय होगा, इसलिए यहाँ क्षय कर दिया ऐसा कथन किया है। अपेक्षा समझना, आप कहेंगे नवक बंध का कहाँ क्षय किया, वो हो जाएगा क्रोध रूप से परिणमित होकर, क्योंकि बंधते समय तो नहीं होता है। पुरुष वेद का बंध रुक गया है, उदय भी रुक गया है, और जो कोई उच्चिष्टावली होगी वो एक एक करके क्रोध रूप होकर नष्ट हो जाएगी, कल में आती ना वो, परंतु वो क्षय कर दिया कह देंगे। यही बात यहाँ कहते हैं कि पुरुष वेद का क्षय हो गया तभी एकमात्र क्रोध संज्वलन ही उसमें प्रवेश करता रहा, एक प्रकृति, वो एक प्रकृति बाद में एक ही रहेगी, परंतु क्रोध के बाद माया मान होगा, माया होगी, लोभ होगा, स्थान एक का ही रहेगा, प्रकृतियां बदल जाएगी, वो तो बात अभी बताएगी शायद यहाँ आगे। क्रोधे खविदे मानो पविसदी, ये लिखा है, क्रोध का क्षय करने पर मान प्रवेश करता है, क्रोध की अंतर्मूर्त मात्र प्रथम स्थिति थी, तब तक वो मान माया लोभ सारा ऊपर ही पड़ा था द्वितीय स्थिति में। अब जब क्रोध का वेदक काल यानी वो बंध काल और उसका उदय काल समाप्त होने को आया है, तब क्या होता है, वो कम होते 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 घटते घटते आवली में प्रवेश कर गया है, और फिर वहां अंतर्मूर्त मात्र फिर मान की रचना हो जाती है, तब तक मान के आए नहीं थे नीचे परमाणु, अब नई रचना होगी, मान को उदय समय से लेकर अंतर्मूर्त तक दिया जाएगा, और क्रोध के जो उच्चिष्टावली है वो एक एक समय करके मान रूप होकर नष्ट हो जाएगी। तो मान है वो उदयावली में प्रवेश करेगा, एक ही प्रकृति। तो कहते क्रोध का क्षय करने पर मान प्रवेश करता है। हरेक के बारे में यही समझना कि नवक समय प्रबद्ध है, वो द्वितीय स्थिति में पड़ा है जो नया बंधा है, क्योंकि उसकी आबादा है और उसके ऊपर उसके निषेक बने हैं, परंतु वो तो यथा समय दो अवली में एक समय कम उतने काल में नष्ट हो जाएंगे, उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है, यहाँ उदयावली में कौन प्रवेश करता है उसकी बात चल रही है। मान का क्षय ऊपर, माने खविदे माया पविसदी, मान का क्षय करने पर माया प्रवेश करती है, मायाए खविदाए लोभो पविसदी, माया का क्षय करने पर लोभ प्रवेश करता है, लोभे खविदे अपवेशगो, लोभ का क्षय करने पर अप्रवेशक होता है, लोभ तो अपने ही रूप से नष्ट हो जाता है, उसके बाद तो कोई मोहनीय रहा नहीं बचाने। ये सूत्र सुगम है, किंतु इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति आवली मात्र शेष रहने पर, ये महत्व की बात है, क्या क्या होता है, पहले अंतर कर दिया था उन्होंने, क्रोध की रचना एक अंतर्मूर्त बनाई थी उदय के समय से लेकर, अभी वो नष्ट होते 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 अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त उसका काल है, तो एक एक समय गलता चला जाएगा, ऊपर से भी नीचे आते रहते हैं, पर परमाणु आवली मात्र शेष रहा, इसको उच्चिष्ट आवली कहेंगे। क्या होगा, मान संज्वलन का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति करता है, तब तक मान के परमाणु ऊपर ही पड़े हैं, अब मान के नीचे आएंगे और फिर अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति हो जाएगी प्रथम स्थिति, वहां पर उसकी बात मत निकालो अभी, फिर वो कंफ्यूजन बढ़ेगा, अभी तो प्रथम स्थिति में रचना होती इतनी बात करो, वो कृष्टि होती है, फिर क्या होती है, वो संग्रह कृष्टि क्या है, वो कृष्टि है नहीं क्या, उसकी बात अभी नहीं, वो तो जब सपना का प्रकरण होगा तब उसकी बात करेंगे। हाँ नहीं, इतना तो पचने दो ना, ये आसान चल रहे हैं और अभी ख्याल में भी आ रहा है, फिर वो दूसरी स्थिति में क्या होता है वो विषय अभी यहाँ नहीं निकालना। तो कहते वहां पर उच्चिष्टावली मात्र काल तक दोनों का प्रवेशक होकर अनंतर एक का प्रवेशक होता है, यानी उच्छिष्टावली काल है तब तक दोनों का वो प्रवेशक है ना, उसमें प्रवेश तो हो चुका है उसका, भले उदय रूप नहीं है अभी, उच्छिष्टावली बाकी है। तो उच्छिष्टावली बाकी है तो उदयावली में प्रवेश है उसका, अभी वो एक एक गलेगा तब तक का तो कहेंगे दोनों का प्रवेशक है। अनंतर एक का प्रवेशक होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार शेष संगलनों में भी कहना चाहिए, किंतु परंतु लोभ का क्षय होने पर कोई कर्म प्रवेश नहीं करता, क्योंकि विवक्षित मोह कर्म उसके आगे नहीं है। इस प्रकार एक प्रकृति के प्रवेश स्थान के चार भंग है, दो प्रकृतियों के प्रवेश स्थान के 15 भंग है, और शेष प्रवेश स्थानों के भी भंगों के प्रमाण का अनुगम करना चाहिए। यानी कैसे कैसे उसमें भंग कब कहेंगे, प्रकृति बदलने स्थान तो संख्या को कहेंगे, और जब प्रकृति बदलती है तो उसको कहेंगे भंग। जैसे एक प्रकृति में क्रोध का एक, अभी एक की बात करेंगे, क्रोध का एक, मान का एक, माया का एक, और किसमें 15 भंग कैसे, एक तो तीन है ना उसके, वेद तीन है और कषाय चार है। अब उसके साथ ले लेंगे ना, कोई क्या है शुरू से ही माया कषाय वाला होगा, कोई शुरू से ही मान कषाय वाला होगा, ऐसे भी होता है। यहाँ तो क्रोध बाद में, क्रोध के बाद मान लिया, मान के बाद माया लिया, चार से एक 12 तो वही हो जाएगी। हाँ, और ये जो है क्रोध, क्रोध में से मान बनने पर दो दो होती चली जाएगी, और मान माया माया लोग वो तीन हो जाएगी। जब ये उच्छिष्टावली में आता रहता है तब तक बाय दैट टाइम दूसरी रचना हुई ना। यहाँ क्या लिखा देखो, 129 पेज पर से पहली लाइन लास्ट में, वहां पर उच्छिष्टावली मात्र काल तक दोनों का प्रवेश होकर अनंतर एक का प्रवेशक होता है। यानी उच्छिष्टावली काल तक दोनों का प्रवेशक हुआ, फिर एक का प्रवेशक फिर हुआ, यानी बीच बीच में वो एक एक बढ़ता गया उनका दो का स्थान। यानी पहले तीन वेद के साथ चार कषाय लेना, तो चार्त्रिक 12 तक वे हो गए, ये तीन हो गए। क्रोध का अवली उच्छिष्टावली बाकी है, तभी उसी समय मान में आ गया तो दो हो गए, अवली तक दो हो गए उसके। फिर मान के साथ माया, माया के साथ लोभ, लोभ के साथ तो कोई है ही नहीं है। इस प्रकार ओग से स्थान समुत्कीर्तना समाप्त। अब यहीं पर निर्णय उत्पन्न करने के अभिप्राय से आदेश प्ररूपणा करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं, ये और ज्यादा स्पष्ट करेंगे बताएंगे। यथा समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। उच्चारणा भी फिर दोबारा ओह को बताएंगे, ओह से 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, ये तो हमने देखे थे, असंयत के योग्य कहा था इसको, और फिर उपशम श्रेणी चढ़ते हुए या उतरते हुए उन्होंने भी बाकी बताए थे कि 20, 19, 13, 12, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2 और 1, इन प्रकृतियों प्रकृति स्थानों के प्रवेशक जीव है। देखो हमने जब बताए थे ये उपशम श्रेणी उतरते समय, तो एक का देखा था, एक के बाद तीन का देखा था, तीन के बाद चार का देखा था, छह का देखा था, फिर सात, नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद बारह, तेरह और उन्नीस देखे थे। अभी क्षपक श्रेणी की अपेक्षा कैसे देखे थे हमने, तेरह वाला देखा था हमने, 21 का था 13 का हो गया 8 का क्षय होने पर, और 13 में से 2 का हो गया था। हाँ, तो यहाँ 13 का तो आ ही गया है, जो दो वाला जो उपशम श्रेणी में नहीं था वो क्षपक श्रेणी में बताया है। ख्याल में आई बात? तो ये सारे उन्होंने अलग अलग से नहीं बताए, टोटल एक साथ बता दिया। यानी 28 से लेकर क्रम से उन्होंने 19 तक तो क्रम से आ गए, फिर वो जो श्रेणी की अपेक्षा बताए थे क्षपक श्रेणी में 13 और 2 के देखे थे हमने, और बाकी वो उपशम श्रेणी की अपेक्षा देखे। इसी प्रकार प्रकाश तो दिख रहा है, प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। ऊपर क्या बताया, इन प्रकृति स्थानों के प्रवेशक जीव है, जो है ये बताना, ये समुद्र कीर्तना हो। अब मनुष्य त्रिक में ये घटित होगा तो मनुष्य त्रिक में ये बात होती है। ये मनुष्य त्रिक कौन कौन है? प्रेरणा बेन, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं, वे सभी तो श्रेणी चढ़ेंगे ना, इसलिए सबको ले गए। आदेश से नारकियों में, अभी नारकियों में तो श्रेणी नहीं है, 28, 27, 26, 25, 24, 22 और 21, 23 को क्यों नहीं लिया मंजूबेन? हाँ, क्षपणा जब चालू करता है उसके 23 का स्थान होता है, 24 का था, 24 में से मिथ्यात्व का क्षय होने पर 23 का हो जाता है प्रवेश। हाँ, वो कृतकृत्य वेदक अवस्था में जाएगा तो इसलिए वो 22 का हुआ और बाद में 21 का हो जाएगा। इतने प्रकृति स्थानों के प्रवेशक जीव है। इसी प्रकार सब नारकी 23 क्यों नहीं, 23 का स्थान कब होता है? तो देखो, पहले में पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है तो 24 का प्रवेशक है, उसके बाद मिथ्यात्व की क्षपणा करता है तो प्रवेशक किसका? दर्शन मुनि की 2। क्या 23 का कौन सा स्थान है वो मैं समझा रही हूँ, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले के 24 में से 23 का होता है जब मिथ्यात्व का क्षय हो चुका है, और बाद में सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय हो जाएगा तो 22 का स्थान हो जाएगा, क्योंकि वहां सम्यक प्रकृति अभी भी उदयावली में प्रवेश कर रही है। तो कृतकृत्य वेदक में भी वो अंतर्मूर्त प्रमाण वो स्थिति बाकी है तो उसकी भी उदीर्ण उदयावली में प्रवेश वगैरह चल रहा है। ऐसा जो मरकर नरक में जाना है तो उसको 22 का स्थान तो हो सकता है, 23 का तो कर्मभूमि के मनुष्य जो क्षपणा का कार्य जिसने शुरू किया है उसी को होगा, तो मनुष्य में ही वो पॉसिबल है, अन्यत्र नहीं। 23 वाला क्या में आई बात? ये कृतकृत्य वेदक, कृतकृत्य वेदक है ना, कृतकृत्य वेदक है। अंतिम कांडक समाप्त होने पर भी अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति बाकी है तो अंतर्मूर्त के ऊपर के निषेकों में से आवली में प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार सब नारकी सामान्य तीर्यंच, अभी तीर्यंचों में भी जो कृतकृत्य वेदक उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा 22 वाला भी स्थान वहां पर होगा। पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक, अभी त्रिक कैसे लिया, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर 9 ग्रवेक तक के देव में जानना चाहिए, परंतु भवनवासियों में और तीर्यंचनी में ये 22 वाला नहीं होगा, 22 वाला नहीं होगा, बाकी के तो होगी। पंचेंद्र तीर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य 22 वाला दूसरा स्थान कौन सा हो सकता है? नहीं, सासाधन में तो होगा ना, ओ सासाधन में हो सकता है, कृतकृत्य में तो ठीक है मगर सासाधन में भी होता है ना ये, अभी हमने देखा था ना 22 वाला स्थान होता है, औपशमिक वाले के 21 का था, अनंतानुबंधी की विसर्जना करने वाले औपशमिक वाले के 21 वाला है, वही सासाधन में आया तो 22 वाला हो गया। અને અનંતાનુબંધી કા વિસંયોજક ઉપશમ સમય દૃષ્ટિ સાસાધન મેં આને પર 22 કા હોતા હૈ. અભી હમને દેખા થા ના 22 મેં સે વો ફિર 22 મેં સે 25 હો જાતા હૈ ઓર ફિર નીચે આતા હૈ તો 26 હોતા હૈ. इसलिए त्रिक लिया पंचेंद्रिय त्रिक. कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा तो मात्र 22 का रहेगा. सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर नवग्रहिक तक के देवों में जानना चाहिए. पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में ये सारी मिथ्या दृष्टि है. 28, 27 और 26 प्रकृति स्थानों के प्रवेशक जीव है. मैंने वो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, कोई उद्वेलना कर रहा है, ऐसे सब जीव इसमें ले सकते हैं. अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 28, 24, 22 और 21 प्रकृति स्थानों के प्रवेशक जीव है. यहाँ पर तो सिर्फ अपना ही लेना 22 में. 21 तो क्षायिक समय दृष्टि है ही, या दूसरा भी कौन सा ले सकते 21 वाला. प्रथम उपशम कैसा होगा सर्वार सिद्धि में? शाही का बता दिया. दूसरा कौन सा जीव है द्वितीय उपशम वाला?
हाँ,
आदेश में नारकियों में 22 और 21 बताए. हाँ, भवनवासियों में 21 का कैसा होगा? प्रथम ऑप्शन वाले की होगा. प्रथम ऑप्शन विद अनंतानुबंधी की विषय योजना. और 22 वाला वही विसंयोजक सासावन में आता है तो 22 का होता है. अभी सर्वार सिद्धि में भी 21 का कौन कौन हो सकता है? क्षयिक समय दृष्टि और द्वितीय उपशम वाला. 22 वाला कृतकृत्य वेदक. कृतकृत्य वेदक हो सकता है या पहले समय का वेदक समय दृष्टि भी हो सकता है. द्वितीय उपशम में से वेदक हुआ एक समय के लिए. वेदक का पहला समय द्वितीय उपशम में से वेदक हुआ. ख्याल में द्वितीय उपशम वाला 21 का था. अब वो चौथा गुणस्थान उसका चालू रहा तो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई. बाकी दो प्रकृतियों की सत्ता तो है उसके, तो उदयावली के बाहर उसकी रचना है. चौबीस वाला कौन है? हाँ, ये सेंगे. और 28 वाला वेदक समय दृष्टि सादे नहीं गए ना. ये अनुदिश की बात चल रही है. इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए. विशेषार्थ कषायोप शामना से च्युत होने पर चूर्णी सूत्रों में जिन प्रवेश स्थानों का निर्देश किया है अन्य स्थानों के साथ वे ही यहाँ ओग प्ररूपणा में परिगणित किए गए. यानी उसको भी काउंट किया है, उसको भी गिना है. कषायोप शामना से च्युत हुए जीव की अपेक्षा जो अन्य प्रकार से 8, 11, 14, 15, 16, 17 प्रकृतिक प्रवेश स्थान जयदेवला टीका में बतलाए हैं उन्हें यहाँ परिगणित नहीं किया है, ये भी स्थान बताए थे ना, याद है कि नहीं? कौन से है ये? वहां मरकर देव में जाने वाले शेष कथन सुगम है, यानी उसी मार्गणा में, यानी स्वस्थान में रहते हुए वो उसको यहाँ लिए है, मरकर देव में जाने वाले की अपेक्षा यहाँ नहीं ली है। अब अभी तक तो समुत्कीर्तना हुई, अभी सादी अनादि कहाँ से शुरू हुआ था? अपना प्रवेश स्थान की समुत्कीर्तना, ये हमने 119 या उसके पहले देखा। समुत्कीर्तना ये 113 पृष्ठ से शुरू हुआ था, ये 112 रादर। समुत्कीर्तना दो प्रकार की है, ये प्रकृति स्थान प्रवेश है ना, प्रकृति स्थान प्रवेश, यानी प्रवेश करने वाले प्रकृतियों की टोटल संख्या, स्थान एक हुआ था वहां पर। अब यहाँ 2, 3, 4 और 5 सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव प्रकृति स्थान प्रवेश नंबर 2, 3, 4, 5। तो निर्देश दो प्रकार का। अरे समाप्त हो, टाइम हो गया पहले बताना। हाँ विषय भी अपना समाप्त हुआ है, अभी नया विषय चलेगा। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनो सदा लेत हो। प्रेरणा भी